खुराना मैंशन में कबीर और युवानी की शादी हो रही थी। कबीर के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। माफिया की दुनिया में रहते हुए उसने कभी अपनी फैमिली बनाने का नहीं सोचा था। फिर वो आरव के पास आया, उसके पास ही उसे खुद की फैमिली जैसा महसूस हुआ और वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था। युवानी मंडप में उसके पास बैठी थी। उसने पेस्टल पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था और साथ में ग्रीन एमरल्ड ज्वेलरी। कबीर का ड्रेस भी उससे मैच करता हुआ था। इस मोमेंट में कबीर की आंखें नम हो रही थीं, तो युवानी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम पहले ही रोने लग गए हैं। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफ मैं कंट्रोल करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब में कहा, बस यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लाइफ में भी ये मोमेंट आ रहा है। तभी अचानक आरव ने कहा, तो यकीन कर लो कबीर, तुम्हारी लाइफ में भी सब अच्छा ही होगा। उसे अपने पास देखकर कबीर और युवानी दोनों चौंक गए। वो इस वक्त उनका गठबंधन बांधने के लिए आगे आया था। आरव ने आगे कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अब तुम उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो, तुम खुराना इंडस्ट्रीज के मैनेजर हो। हाँ, खुद को दादी का बड़ा पोता भी बोल सकते हो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, आरव ने इनडायरेक्टली कहा। वो डायरेक्टली कबीर को ये कहने से हिचकिचा रहा था कि वो उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता है। कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कबीर और युवानी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, तो वहीं अयान भी आयू के पास से साक्षी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, तो कब हाँ कह रही हैं आप, किस बात के लिए? साक्षी ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, अपनी शादी के लिए और किस बात के लिए? आपको मनाना काफी मुश्किल रहेगा, लगता है डायरेक्ट घर वालों से जाकर ही बात करनी होगी, अयान ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर साक्षी ने शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर ली। अयान ने अपने हाथ में फूल पकड़े हुए थे, वो साक्षी पर डालते हुए बोला, अच्छा तो आप ब्लश भी करती हैं, वैसे इस लैवेंडर लहंगे में आप काफी खूबसूरत लग रही हैं, कहो तो अभी शादी कर लेते हैं, शादी का मंडप भी तैयार है और दूल्हा तो उससे भी ज्यादा तैयार है। साक्षी ने जल्दी से अयान की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, अभी नहीं अयान, अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई है, थोड़ा तो टाइम दो। अयान ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। वहीं रायशा की नजरें अभी भी मंथन पर ही थीं। वो अकेले खड़ा था। रायशा की गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, जो होगा देखा जाएगा रायशा सिंघानिया, जाकर उसे अपने दिल की बात बता आती हूँ, इतने लोगों के सामने वो गुस्सा भी नहीं कर पाएगा, क्या पता उसे मैं अच्छी लगती हूँ और वो मुझे हाँ कह दे। कमॉन रायशा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी और मंथन को अपने दिल की बात बतानी ही होगी, आज ही अच्छा मौका मिला है, वरना ये तो मुझसे मिलता तक नहीं है। मंथन को अपने दिल की बात बताने का सोचकर रायशा उसके पास जाने लगी। रायशा मंथन के पास आकर धीरे से बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ जरूरी बात। तुम्हारी जरूरी बात मुझे अच्छे से पता है, तो प्लीज कुछ मत कहना, कुछ ना ही बोलोगी तो बेटर रहेगा, कम से कम चीजें तो खराब नहीं होगी, मंथन ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रायशा उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी, वो नहीं समझ पा रही थी कि मंथन किस बारे में बात कर रहा है। रायशा ने सिर हिलाकर कहा, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, बात बताए बिना तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहने वाली हूँ, तुम यही कहने आई थी ना कि तुम मुझे लाइक करती हो, मंथन ने सीधे सीधे पूछा। रायशा के बिना बताए ही मंथन को उसके दिल की बात पता चल चुकी थी। रायशा हैरानी से आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देख रही थी, तभी मंथन ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर तुम अनु की जगह उसकी मूवीज में ही ले सकती हो, मेरी लाइफ में नहीं, तुम काफी अच्छा कर रही हो तो अपने करियर पर ध्यान दो, ना कि इन सब बातों पर, आई होप यू अंडरस्टैंड, मंथन ने अपनी तरफ से सीधे सीधे ना कह दी थी और वो रायशा को वहीं पर छोड़कर बाहर जाने लगा। वैसे भी साक्षी की वजह से वो शादी अटेंड करने आया था, थोड़ी देर रुकने के बाद उसे जाना ही था। रायशा भीगी पलकों से मंथन को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे कहीं भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनना था, लेकिन अब लगने लगा है अनुष्का की डेस्टिनी मुझसे जुड़ी हुई है, उसी की मूवीज मुझे मिलनी थी और अनफॉर्चुनेटली उसी के प्यार से मुझे प्यार होना था। रायशा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था, तो वो दौड़ते हुए खुराना मैंशन के अंदर चली गई। आयु चेयर पर अकेली बैठी थी, उसके आसपास कोई नहीं था। वहां आते ही आयु की तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन उसकी वजह से शादी की रस्में बिगड़ ना जाए या सबका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, ये सोचकर आयु कंट्रोल करके वहां बैठी हुई थी। उसका हाथ अपने पेट पर था, इतने दर्द में भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कबीर और युवानी का गठबंधन बांधने के बाद आरव आयु के पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, कुछ याद आया तुम्हें मिसेस खुराना? आज से ठीक लगभग 9 महीने पहले तुम भी इसी तरह दुल्हन की तरह तैयार हुई थी और हम दोनों की शादी हो रही थी, बस फर्क इतना था कि तब हम दोनों ही उस शादी से खुश नहीं थे। आयु ने आरव की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन शादी के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी, क्योंकि तुम मेरा सच नहीं जानते थे और ना ही मुझे इस बात की कन्फर्मेशन थी कि तुमने अनु को धक्का नहीं दिया था। हाँ, तो ऐसे में भी मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अचानक ही तुम्हारी सच्चाई सामने आई तो मुझे भी शौक लग गया। खैर छोड़ो, उस बारे में बात नहीं करते हैं। अब वो मैटर भी नहीं करता क्योंकि हम लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आरव ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया और बोलते हुए उसने आयु का हाथ अपने हाथ में लिया। आयु का हाथ छूते ही आरव ने महसूस किया उसे तेज बुखार था। आयु ने आरव का हाथ जल्दी से अपने हाथ से अलग किया और कहा, मैं ठीक हूँ, प्लीज रिएक्ट मत करना और कबीर की शादी खराब करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। मुझे दिख रहा है तुम कितनी ठीक हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम अंदर चलते हैं, आरव ने आयु को समझाते हुए कहा। बस थोड़ा सा दर्द है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा, आयु ने सफाई देते हुए कहा। हाँ थोड़ा सा दर्द मिसेस खुराना, जिसकी वजह से तुम्हें फीवर हो गया है। तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, हम अंदर जा रहे हैं और तुम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगी। शादी में डॉक्टर मानसी भी आई हुई है, उसे बोलता हूँ आकर तुम्हारा चेकअप करे, आरव बोला और फिर उसने आयु को अपनी बाहों में उठा लिया। आयु आरव को लेकर कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई और ये देखकर आरव काफी घबरा गया। वो कबीर की शादी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त आयु की हालत भी खराब हो रही थी। आरव आयु को बाहों में लिए हुए गाड़ी में गया। उसने मानसी को भी अपने साथ बुला लिया था और वो भी उनकी गाड़ी में अब हॉस्पिटल जा रही थी। डॉक्टर मानसी भी शादी अटेंड करने के लिए वहां आई थी, इसलिए आरव ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। आरव काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था, बैक सीट पर मानसी आयु को लेकर बैठी थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए आरव ने मानसी से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है इसे, अचानक इसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो सकती है, जबकि कुछ घंटे पहले ये बिल्कुल ठीक थी।
मानसी आयु की हेल्थ के बारे में सब अच्छे से जानती थी, वो अभी आरव को बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, आप घबराइए मत मिस्टर खुराना, ये ठीक हो जाएंगी, बस आप गाड़ी चलाने पर फोकस कीजिए, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। हाँ मैं कर रहा हूँ ड्राइव, आरव ने परेशान स्वर में कहा। गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान मिरर के जरिए आयु पर भी था। मानसी आयु का इनिशियल चेकअप कर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद उसने आरव से कहा, प्लीज मिस्टर खुराना आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा, मुझे लगता है हमें इनकी डिलीवरी अभी करवानी होगी। क्या, आरव ने चौंकते हुए कहा। उसी के साथ उसने झटके से ब्रेक लगाए और गाड़ी रुक गई। आरव मानसी की तरफ मुड़कर बोला, लेकिन डॉक्टर अभी तो टाइम बाकी है, इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है। आरव ने घबराते हुए आयु की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। मिस्टर खुराना बीतता हुआ हर सेकंड इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, मैं डॉक्टर सिंघानिया से बात करके उन्हें हॉस्पिटल आने का कहती हूँ, मानसी ने तेज आवाज में कहा। उसने देखा आरव गाड़ी ड्राइव करने के बजाय आयु को देख रहा था। मानसी उसे एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने का कहती, उससे पहले आरव ने मानसी की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर क्या प्लीज़ आप ड्राइव कर लेंगी, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मानसी ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ गई। आरव पीछे आयु को लेकर बैठा हुआ था, उसे इस वक्त आयु और अपने बच्चों की फिक्र लगी हुई थी। इस बीच आरव ने मैसेज करके अयान को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कह दिया था, साथ ही उसने ये भी कहा था कि वो ये बात किसी को ना बताए। कुछ ही देर में मानसी और आरव हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां आते ही मानसी सीधे आयु को डिलीवरी रूम में ले जाने लगी। अंदर जाने से पहले मानसी में चेंज किया, तब तक अयान और साक्षी भी वहां पर पहुंच चुके थे। चेंज करने के बाद डिलीवरी रूम में जाने से पहले डॉक्टर मानसी आरव के पास आकर बोली, आई नो ये सही टाइम नहीं है जब मैं आपसे इस तरह की बातें कर रही हूँ मिस्टर खुराना, लेकिन आपकी वाइफ पहले से ही जानती थी कि उसके साथ ऐसी किसी तरह की भी सिचुएशन आ सकती है। मतलब क्या है आपके कहने का, आरव ने हैरानी से पूछा। यही कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आयु की जान बचा पाऊं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मानसी ने इतना ही कहा और फिर डिलीवरी रूम में चली गई। वहीं आरव अभी तक मानसी की बात का मतलब नहीं समझ पाया था, वो हैरानी से डिलीवरी रूम की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ तो उसने अयान की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, ये डॉक्टर क्या बकवास कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक है, उसने मुझे खुद कहा था। जवाब में अयान ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसकी नजरें नीचे झुक गई थी। आरव को उस पर गुस्सा आ रहा था, उसने अयान की कॉलर पकड़ी और चिल्लाकर कहा, तुम सबने झूठ बोला ना मुझसे, मैंने कहा था कि मुझसे कुछ मत छुपाना, उसने भी मुझसे झूठ बोला, ये डॉक्टर कुछ और ही कह रही है कि वो नहीं बच पाएगी और तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें भी सब पता था लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। आरव की आंखें गुस्से से जल रही थीं। अयान ने आरव के हाथ अपनी कॉलर से दूर किया और धीरे से कहा, उसने मुझसे कहा था कि मेडिसिन्स रिस्पॉन्स कर रही हैं, मैं आपको बताने आ रहा था लेकिन उसने नहीं बताने दिया। व्हाट यू मीन नहीं बताने दिया अयान, तुम कोई बच्चे नहीं हो जो उसने रोका और तुम रुक गए। आई स्वेर अगर तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी मिसेस खुराना को खोया तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, चाहे फिर इसमें किसी की गलती रही हो या नहीं भी, आरव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और फिर अकेला एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें ऑपरेशन थिएटर पर टिकी हुई थीं। आरव के दूसरी तरफ जाते ही अयान ने साक्षी से धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे आज फिर पूछा था और उसने मुझसे झूठ बोला, मैंने समझाया था साक्षी उसे कि अगर उसे कुछ हो गया तो भाई किसी का कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ तक कि उन बच्चों का भी नहीं। फिर भी उसने भाई से झूठ बोला। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, चलो हम उसके लिए प्रे करते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बी पॉजिटिव, सब अच्छा ही होगा, साक्षी ने आयान को समझाते हुए कहा। आयु को लगभग 2 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत चुका था, लेकिन अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। इन 2 घंटे का हर एक मिनट आरफ पर भारी पड़ रहा था। जब वो अकेले बैठा डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ थे। उधर दूसरी तरफ कबीर और युवानी की शादी की रस्में खत्म हो गई तो गौरवी जी, जय जी और तारा जी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहां आते ही अयान ने उन्हें आयु की हेल्थ के बारे में बता दिया, साथ ही आरफ के गुस्से के बारे में भी। इस वक्त किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आरफ से जाकर बात कर सके। गौरवी ने आरफ की तरफ देखकर अयान से पूछा, बहुत टाइम ले रही है डॉक्टर, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, आरफ किसी से बात भी नहीं कर रहा है, तुम जाकर उससे बात करो ना। भाई इस वक्त बहुत गुस्से में है और उनका गुस्सा भी जायज है, जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आ जाती हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, अयान ने शांत लहजे में रहा। बाहर सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी तो वहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल थी। डॉक्टर मानसी आयु की हेल्थ को कंट्रोल करते हुए सब हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। लगभग 2.5 घंटे के बाद अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, इसी के साथ बाहर हलचल हो गई। आरव जल्दी से उठा और डिलीवरी रूम के पास गया। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं आयु की क्या हेल्थ अपडेट है, प्लीज पढ़कर समीक्षा किया कीजिए यार।